चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले पहली किरण से आशा का सवेरा जागे सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छांव मिले लंबी सी डगर न खले जहां गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती हो कली जहाँ शाम सुहानी ढले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले सपनों के ऐसे जहां में जहां प्यार ही प्यार खिला हो हम जाके वहां खो जाएं शिकवा न कोई गिला हो कहीं बैर न हो कोई गैर न हो सब मिलके यूं चलते चले जहां गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले।
ओम शांति। तीन यात्री तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। यात्रा बहुत लंबी है और वो एक जंगल में आ पहुंचते हैं। शाम का समय है, चलते जा रहे हैं, रास्ते में अंधियारा है और उन्हें बहुत भूख लगती है, पर जो खाने की सामग्री उनके पास है वो बहुत कम है। तो पहला वो गठरी खोलता है और देखता है कि कितना है, तो उसमें हलवा होता है। तो वो कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा भूख लगी है, इसलिए मैं हलवा खाऊंगा। दूसरा कहता है, नहीं, भूख तो मुझे भी लगी है, हलवा मुझे मिलना चाहिए। तीसरा कहता है, नहीं, हलवा मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लगी है। तीनों ही झगड़ने लगते हैं। पहला कहता है, रुको, मैं जिस स्थान से आया हूं वह तपस्या का स्थान है। मैंने अपना जीवन उपवास में, तपस्या में, प्रार्थनाओं में लगाया है। मेरी जैसी तपस्या तुम में से तो शायद किसी ने भी नहीं की होगी। सबसे अधिक तपस्या मैंने की है और इस संसार में तपस्वी सबसे बड़ा है, इसलिए हलवे पर अधिकार मेरा अधिक है। दूसरा कहता है, होंगे तुम तपस्वी, पर जिस ज्ञान की गहराई को मैंने छुआ है उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, और इस संसार को प्रैक्टिकल ज्ञान की आवश्यकता है, ना कि तपस्या की। जितनी किताबें मैंने पढ़ी है तुमने तो उनका नाम भी नहीं सुना होगा, इसलिए हलवा मेरा है। तीसरा कहता है, मैं तो ठहरा पापी, ना तो मैंने कोई किताब पढ़ी है, ना ही मेरे पास ज्ञान है, और ना ही मैंने कोई तपस्या की है, पर भूख मुझे लगी है इसलिए हलवा मुझे चाहिए। तो तीनों झगड़ने लगते हैं और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अच्छा, एक काम करते हैं कि हम रात में सो जाते हैं और जिसको सबसे अच्छा स्वप्न दिखेगा हलवा उसका होगा। तो वो तीनों सो जाते हैं और फिर उठते हैं। पहला कहता है, जो कि तपस्वी है, कि मैंने तपस्या स्वप्न में देखा स्वयं भगवान आए और मैं उनके चरणों में गिर गया और उन्होंने मुझे शरण दी। अब इससे बड़ा और कोई स्वप्न हो सकता है क्या? तो हलवा मुझे ही मिलना चाहिए क्योंकि स्वयं भगवान ने मुझे दर्शन दिए। ज्ञानी कहता है, दिए होंगे भगवान ने तुम्हें दर्शन और तुम उनके चरणों में गिरे होंगे, परंतु मैं तो खड़ा था और भगवान तो स्वयं आए और मुझे गले लगाया, मेरा माथा चूमा स्वयं भगवान ने। तुम तो केवल चरणों में गिरे। तीसरा कहता है, तुमको क्या स्वप्न दिखा? वो कहता है, भगवान मेरे स्वप्न में आए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तुम क्या कर रहे हो, सोए हो, उठो और हलवा खाओ। और मैंने उठ के हलवा खा लिया। तो दो बिल्ले लड़ेंगे और माखन किसको मिलेगा? तुमको। इसलिए कृष्ण के मुख में माखन दिखाया है, इसलिए स्वर्ग किसको मिलेगा? तुमको मिलेगा। दुनिया सोचती ही रहेगी, कल्पनाएं ही करती रहेगी, तर्क वितर्क करती रहेगी, और तुम बैठे बैठे वहां पहुंच जाओगे क्योंकि तुमने ही मुझे बुलाया है। आज सुबह की साकार मुरली इस पाप की दुनिया से कहां ले चल, आज कहीं ले चल। बाबा ने कहा, इस दुनिया में चैन नहीं है, यहां हर व्यक्ति दुखी है। साहूकार भी ऊपर से तो दिखता है सुखी है, पर उसको भी कोई ना कोई दुख तो जरूर है। ऐसा कोई नहीं है संसार में, क्योंकि यह है ही दुखधाम, इसलिए यहां सभी दुखी है। अनित्यम असुखम लोकम, यह संसार अनित्य है, असुखम लोकम है। चित्त चैन जहां पाए, ले चल तू वहीं ले चल इस पाप की दुनिया से, लोगों की जफाओं से, दुनिया की निगाहों से, दुनिया की निगाहों से दूर कहीं ले चल। यहां अत्याचार है, लोगों की जफा, ऑपरेशन, दुनिया की निगाहों से दूर कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। तो बाबा हमें एक ऐसी दुनिया में ले चलने आया है जहां पर क्या होगा, बहुत सारी चीजें होगी, और वो कौन कौन सी चीजें होगी उसकी आज हम चर्चा करेंगे। कुछ बातें तो आज ही की मुरली में आई है, वहां चैन होगा, यहां चैन नहीं है, वहां सुख होगा, यहां सुख नहीं है, वहां शांति होगी, यहां शांति हो ही नहीं सकती। वो जो दुनिया है, जीसस क्राइस्ट ने कहा है, इन माई किंगडम देयर शैल बी नो टाइम। क्या अर्थ है इस वाक्य का? मेरे राज्य में समय ही नहीं होगा, अर्थात इन माई, पाबंदी की बात नहीं कर रहा है, इन माई किंगडम टाइम शैल सीज देयर शैल बी नो टाइम, समय होगा ही नहीं। इसका क्या अर्थ है? जब हमारा कोई स्वजन जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं वो बीमार है और रात भर हमें जागना पड़ रहा है, तो समय कैसे हो जाता है? बढ़ जाता है। और हमारा पुराना मित्र सदियों के बाद लौटा है और रात में हम उससे बात करते बैठ रहे और सुबह हो गई, समय क्या हो गया? कम। तो क्या समय छोटा और बड़ा भी होता है? क्या समय सापेक्ष है, रिलेटिव है? नहीं, समय तो एक ही है, मन की स्थिति अलग अलग है। यदि दुख में समय बढ़ जाता है और सुख में समय कम हो जाता है, तो वो कौन सा समय है, वो कौन सी स्थिति है जिसमें समय रुक जाए? वो स्थिति है परमानंद की अवस्था, जिसे कहते हैं नो टाइम। इन माई किंगडम देयर शैल बी नो टाइम, वहां समय नहीं होगा, समय रुक जाएगा, वहां पर समय ठहर जाएगा, स्टैच्यू हो जाएगा समय। तो सतयुग वो दुनिया है जहां पर समय रुक जाएगा। वैसे समय रुकता नहीं है, पर कहने का भाव है वो परम आनंद की अवस्था होगी, चेतना अपनी परम आह्लाददायक अवस्था में होगी। और सबसे पहली मुरली अव्यक्त वाणियों में, जिसमें बाबा ने विस्तार से सतयुग की चर्चा की है, वो है 2 जनवरी 1980 की। और फिर 7 जनवरी को दूसरी मुरली आई जिसमें तुलना की सतयुग की और संगम युग की, और उसमें यह बताया कि संगम युग कैसे महान है, उसमें 18 बातें हैं। पर ये आज हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम आज इस मुरली की चर्चा करेंगे जो आज बाबा ने कहा, इस पाप की दुनिया से ले चल, इस पाप की दुनिया से उस सुख चैन की दुनिया में ले चल। इस दुनिया में हमको रहना नहीं है, यहां बहुत दुख है, बहुत गम है, यहां बहुत बीमारियां है। एक योगी तपस्या कर रहा है और उसे एक परछाई दिखाई देती है जाते हुए, वो पूछता है तुम कौन हो? वो कहती है शैतान हूं। क्या करने जा रही हूं? वो कहती है प्लेग लाई हूं। कहानी पुरानी है प्लेग के समय की, गांव में जा रही हूं। योगी पूछता है कितनों को मारने का इरादा है? वो कहती है 5,000 का आदेश आया है। एक मास के बाद वो छाया वहां से फिर जा रही है। वो योगी पूछता है तुमने कहा था 5,000 को मारूंगी, तुमने तो 10,000 को मार दिया। परछाई कहती है मारा तो मैंने 5,000 को ही, 5,000 भय से मर गए। खौफ, डर, आ चल के तुझे मैं लेके चलू कहां? एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, ऐसे गगन के तले जहां सबसे पहली बात गम नहीं होगा, आंसू नहीं होंगे, अर्थात किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। और दुख के क्या कारण है? बीमारी। दुख के क्या कारण है? बुढ़ापा। दुख के क्या कारण है? मृत्यु। दुख के क्या कारण है? अभाव। दुख के क्या कारण है? अविद्या, अज्ञान। दुख के क्या कारण है? इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं। दुख के क्या कारण है? विकार। दुख के क्या कारण है? महंगाई। दुख के क्या कारण है? निर्धनता। दुख के क्या कारण है? कुपोषण। दुख के क्या कारण है? पोल्यूशन, पर्यावरण में प्रदूषण। दुख के क्या कारण है? बेरोजगारी। दुख के क्या कारण है? ओवरक्राउडिंग। दुख के क्या कारण है? अशिक्षा। दुख के क्या कारण है? प्राकृतिक आपदाएं। दुख के क्या कारण है? असंतोष। दुख के क्या कारण है? आसक्ति, मोह, लगाव। दुख के आज की मुरली में नष्ट मोह हो जाओ, घर गृहस्थी में रहते हुए बाप तुम्हें युक्ति दिलाते हैं, एक मुझको याद करो बस। दुख के क्या कारण है? स्वार्थ। दुख के क्या कारण है? बीमारियों में सब आ गया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। हे अर्जुन, जन्म को, मृत्यु को, जरा को और व्याधि को, हर बात में दुख है। जन्म में भी दुख है, मृत्यु में दुख है, बुढ़ापे में, वार्धक्य में दुख है, हर बात में दुख ही दुख समाया है संसार में। क्या ऐसी भी कोई दुनिया है, ऐसा भी कोई संसार है जहां पर दुख ही ना हो? इसकी चर्चा हर धर्म ने की है, इसकी परिकल्पना हर धर्म में आई है कि ऐसी भी कोई दुनिया, ऐसा एक यूटोपिया, उसको यूटोपिया नाम दिया है, टेप जेपी, द प्राइम टाइम, अलग अलग नाम दिया है, बहिष्त फिरदौस, ऐसी एक दुनिया। जॉन मिल्टन, इंग्लिश कवि, जो कि जन्मांध था, परंतु फिर भी उसने किताब लिखी पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड, स्वर्ग जो खो गया था, स्वर्ग जो फिर मिल गया, स्वर्ग की उसने बातें लिखी है उसमें। हर व्यक्ति ने स्वर्ग के विषय में सोचा है कि ऐसी दुनिया जरूर होगी जहां दुख न होगा। क्यों लिखा इन लोगों ने ऐसा? क्योंकि ये शायद देवकुल की आत्माएं थी और जिनमें द्वापर युग से वो स्मृतियां थी कि एक दुनिया वैसी है। क्यों चाणक्य कहता है जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है और आंभी कुमार सिकंदर से संधि कर लेता है और भारत के द्वार ही खोल देता है सिकंदर के लिए, उस आंभी कुमार को चाणक्य कहता है हम देवों की ही तो संतान है। क्यों कह रहा है वो? वहां तो सिकंदर पोरस कहे, आंभी कुमार कहता है सिकंदर कोई साधारण पुत्र नहीं है, सिकंदर देव पुत्र है, ईश्वर पुत्र है, वो विश्व को जीतने चला है, उसको ईश्वर से आदेश आया है। चाणक्य कहता है हम सभी तो देव पुत्र है, हम सभी तो ईश्वर की संतान है, हम तो स्वयं हम ही तो देवताएं हैं। तो ये कौन आत्माएं हैं जिन्होंने स्वर्ग की चर्चा की है द्वापर से? ये वही देवकुल की आत्माएं अर्थात हम ही थे जिनको ये स्मृतियां थी। क्यों चाणक्य अखंड भारत का स्वप्न देख रहा है जहां पर भारत 16 जनपदों में बटा हुआ है, जहां खंड खंड की राजनीति यहां पर है, जहां कूटनीति है सब जगह, वहां चाणक्य एक अखंड भारत का स्वप्न देख रहा है। क्यों? क्योंकि ये वही आत्माएं थी, आत्मा थी शायद वो अखंड भारत में जहां थी, जहां अद्वैत राज्य था, एक छत्र साम्राज्य था लक्ष्मी नारायण का। इसलिए इन सभी आत्माओं ने द्वापर से जो आई थी अखंड भारत का स्वप्न देखा। विवेकानंद ने कहा है माई इंडिया अराइज फ्रॉम वेयर, मेरा भारत आएगा कहां से, जागेगा ये, गरीब की कुटिया से, खेतों से, दुकानों से, शहरों से, यहां से भारत जागेगा, यहां से भारत एक होगा, जब सब एक हो जाएंगे। ये वो आत्माएं थी संसार की जो हिंदू धर्म की थी, और वो सब आत्माएं कहां थी, शायद देवकुल में थी। इसलिए उनके मन में ये भाव है कि ऐसा एक दुनिया ऐसी है कि जहां पर कोई गम नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। तो बाबा कह रहे हैं, मैं कहां ले चलूं तुमको, जहां गम ना हो, आंसू भी ना हो। कुछ दिन पहले साकार मुरली थी, सतयुग के छोटे बच्चे रोएंगे नहीं, रोएंगे नहीं। वो है हंसने की दुनिया, वो है खुशियों की दुनिया। गम होगा ही नहीं, दुख होगा ही नहीं, दर्द होगा ही नहीं, पीड़ा होगी ही नहीं। वहां काले मृत्यु नहीं होगी, वहां कंचन काया होगी, हर आत्मा निरोगी होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, हर प्रकार से स्वस्थ होगी। बस प्यार ही प्यार पले। आज की दुनिया में क्या बोल रहा है, झगड़े, घृणा है, नफरत है। और उस दिन मुरली में था, अगर तुम में से किसी ने घृणा, नफरत और तिरस्कार किया तो बाप तुमको क्या देंगे, दंडे, दंडे खाने पड़ेंगे। तो ये तिरस्कार की दुनिया है, ये द्वेष की दुनिया है, ये झगड़ों की दुनिया है, ठगों की दुनिया है, पापों की दुनिया है। और उस दुनिया में क्या है, केवल विशुद्ध प्रेम। अंग्रेजी में कहते हैं प्लेटोनिक लव। ऐसा प्रेम तो संसार में है ही नहीं कहीं। प्लेटोनिक अर्थात नॉन फिजिकल, अशरीरी प्रेम। प्लेटोनिक अर्थात आध्यात्मिक, प्लेटोनिक अर्थात मेटाफिजिकल, प्लेटोनिक अर्थात फिजिकल नहीं, शरीर का नहीं। प्रेम का तो शरीर से संबंध ही नहीं है। और संसार में जो प्रेम है वो तो शरीर के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो वासना है जिसको वो प्रेम कहते हैं। और वो वासना दबी है, इसलिए तो वो निकल निकल कर बाहर आती है। जितना वासनाओं को दबाया जाए, जितना वासना के साथ लड़ाई किया जाए, जितना वासना से डरा जाए, वो और उभर उभर के बाहर आती है। इसलिए ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते और करते करते फिर अप्सराएं प्रकट होती है। क्या पड़ी है अप्सराओं को आने की, ऐसे जंगल में वो अप्सराएं कौन थी, उनके ही मन में दबी हुई वासनाएं बाहर निकल रही थी। किसी अप्सरा को कोई लेना देना नहीं है, वो मेंटल प्रोजेक्शन था उनका, सप्रेस्ड फीलिंग्स थी, सप्रेस्ड पैशंस। इसके लिए वासनाओं को दबाओगे, वासनाओं से लड़ोगे और वासनाओं से डरोगे तो वो सुनामी की तरह फिर बाहर आएगी। इसलिए उनको समझना है वो है क्या, और उनका रूपांतरण करना है, तो ही उनको जीता जा सकता है, इन विकारों को, अन्यथा नहीं। नहीं तो 15 साल, 20 साल, 50 साल ब्रह्मचर्य करने के बाद भी आज की मुरली में है, बुद्धि को चट किसने कर दिया है, बायोस्कोप ने चट कर दिया, ये तो सीधा क्या है, नरक है, नरक। कहां से सीखते हैं ये सब लोग, सिनेमा से ही तो सीखते हैं। और ये वासनाएं बाहर आती है, और 50 साल का ब्रह्मचर्य गया। तो प्रेम तो है ही नहीं संसार में, बस प्यार ही प्यार पले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। यहां पर सुबह उठते ही कौन सा सवेरा नहीं होता है, निराशा का कि रात जागती है, उठते ही खबर, यहां इतने मरे, वहां उतने मरे, यहां ये हुआ, वहां वो हुआ। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, आशा का सवेरा है, वहां सब खुश है, सब आनंदित है, कोई गम नहीं है। चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। वहां दिन है, वो सृष्टि का दिन है, ब्रह्मा का दिन है, ब्राह्मणों का दिन है, अंधेरा वहां है ही नहीं। किसी भी प्रकार का अंधेरा नहीं है, इसलिए इतना खुश है सब। कभी धूप खिले, कभी छाव खिले मिले, लंबी सी डगर न खले, खलती नहीं, अखरती नहीं, दुखी नहीं करती ये लंबी डगर भी, क्योंकि सभी आत्माभिमानी है। कल की वाणी, पैदल कितना भी चले जाओ क्या होगा, थकोगे नहीं। देवताएं आत्माभिमानी है। अगर देवताओं में देहभान नहीं है तो ये शादी क्यों करते हैं कमलेश भाई? देवताएं आत्माभिमानी है, पर उनमें ये तो है कि मैं स्त्री हूं और पुरुष हूं, परंतु आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि विकार नहीं है। इतनी पावरफुल आत्मा है कि उनमें विकार नहीं है। ये देहभान तो द्वापर से चालू हुआ, इसलिए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सब कुछ योग बल से हो रहा है, तो कुछ भी खलता नहीं है, कुछ भी अखरता नहीं है। वहां मेहनत है ही नहीं, पर आज की मुरली में, पर तुमको मेहनत यहां करनी पड़ेगी, ऐसे ही विश्व के मालिक नहीं बनोगे। आज की मुरली में एक लाइन है, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, जहां प्यार ही प्यार पले, जहां दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, वहां आजादी है, फ्रीडम है। क्या है वहां? मुक्ति है। और यहां क्या है? बंधन। कुछ भी करो बंधन है, पाप करो तो बंधन है ही, परंतु पुण्य करो तो उसमें भी बंधन है। हमने किया हमारा नाम हो जाए, सत्कर्म में भी बंधन है, हर चीज में बंधन है, वो जीवन मुक्ति धाम है, यह बंधन धाम है। जहां रंग बिरंगी पंछी आशा का संदेश लाए, वहां के पंछी कैसे होंगे? अभी चलो मुरली की तरफ। वहां के पंछी कैसे होंगे? रंगी बिरंगी होंगे, सुंदर सुंदर पक्षी होंगे। क्या करेंगे तुम्हारे लिए? वो गाना गाएंगे तुम्हारे लिए, डांस करेंगे, जैसे इस दुनिया में मनोरंजन के लिए करते हैं। तुम अलग अलग मेथड्स अपनाते हो, वैसे वहां पर पंछी तुम्हारे लिए नृत्य गाएंगे, पंछी सुंदर सुंदर गीत गाएंगे तुम्हारे लिए, वहां पर तुमको सुबह सुबह जगाएंगे, और प्रकृति और जो पत्ते जब हिलेंगे तो अच्छे अच्छे साज निकलेंगे वहां से, और तुमको बजाना सीखना नहीं होगा, म्यूजिक क्लासेस, अपने आप हर एक हाथ रखो और म्यूजिक चालू। जहां रंग बिरंगी पंछी आशा का संदेश लाए, आशा का संदेश लाएंगे पंछी, पंछी गीत गाएंगे। वहां केवल दो ही सब्जेक्ट होंगे, कौन कौन से? चित्रकला और संगीत विद्या। चित्रकला, इतिहास भी होगा, पर इतिहास कैसा होगा? कविता के रूप में इतिहास सिखाया जाएगा, और इतिहास में तुम क्या पढ़ोगे? क्योंकि इतिहास तो वहां है ही नहीं, यह है, हम ही तो पहले हैं, हमसे पहले कुछ है ही नहीं, तो इतिहास में क्या पढ़ेंगे? इतिहास में तो यही पढ़ेंगे बस, क्या ज्योग्राफी तो होगी, कहां पिकनिक जाना है, ये तुम्हारे विदेश के स्थान क्या बन जाएंगे? पिकनिक स्पॉट्स बन जाएंगे, वो भी इतने नहीं होंगे जितने अब है, कम होंगे। वहां नाटकशालाएं बहुत सारी होगी, बाबा के महावाक्य है, नाटक होते रहेंगे जगह जगह पर, गली नुक्कड़ में, वहां पर सिनेमा नहीं होगा, ये भी उस मुरली में कहा है। गलियों में बाबा ने हर मुरली में कहा है, वर्षे को याद करो, अर्थात उस दुनिया को याद करो जहां तुम्हें चलना है, उस दुनिया को याद करो जहां तुम्हें चलना है। पांच स्वरूपों का अभ्यास करो कम से कम 8 बार एक दिन में करो, अगर भूल जाओ तो सोना पीछे नींद पीछे करना पहले अभ्यास करो, ये सब कहा है, उसमें एक देव स्वरूप का तो अभ्यास आता है। तो वहां के पक्षियों को देखना है, वहां की पहाड़ियों को देखना है, पहाड़ कैसे है, डिजाइन वाले पहाड़ है, पुष्पक विमान कैसे है, अलग अलग रंग के, अलग अलग डिजाइन के, और एक पर्सनल है, एक फैमिली वाला है। जब इच्छा हो एकांत में जाना है तो एक अपना अकेले का लेके जाना पर्सनल, और कभी कभी लगे कि परिवार के साथ चलना है तो परिवार वाला ले जाना। उसके बाद में सपनों में पली हस्ती हो कली, जहां शाम सुहानी ढले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, वहां की कली फूल कैसे है हंसते हुए, और फूल कैसे है खाओगे क्या, वहां नमक नहीं होगा, वहां चीनी नहीं होगी, वहां फल होंगे, रस वाले फल होंगे, अलग अलग टेस्ट वाले फल होंगे, फलों में भी दो प्रकार होंगे, एक खाने वाले फल एक पीने वाले फल, और उसमें भी ज्यादा दबाना नहीं पड़ेगा, एक सब्जी हवा नहीं होगी, सब्जी हवा नहीं होगी, सब्जी हवा नहीं होगी, मुरली में महावाक्य है बाबा के, ये जो है ना फल ही सब्जी का काम करेंगे, चपाती विपाती सब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वहां सब कुछ प्राकृतिक होगा, सब कुछ नेचुरल होगा, दूध हेलीकॉप्टर से आएगा, कहां से आएगा, खाना पकाएंगे ऐसा बोला ही नहीं है भाई, चावल बिवल तो बाद में आया सब, वहां सब कुछ फल, फलों में ही डिवाइन न्यूट्रिशन होगा, वहां पर डिवाइन न्यूट्रिशन होगा, टीपीएन टोटल प्राणिक न्यूट्रिशन होगा, वहां पर डिवाइन न्यूट्रिशनल प्रोग्राम होगा, वहां पर ये फिजिकल फूड नहीं होगा, लाइट ईटर्स होंगे, सनलाइट ईटर्स, वहां पर सोलर फीडिंग होगी, ऊर्जा, ऊर्जा ही भोजन होगा। कोई दिखाया कि लक्ष्मी नारायण या बैठे हुए और वो भोजन बना रहे आग पर, चूल्हा फूक रहे, कोई है ऐसा चित्र, ये रसोईया वो कुक सपनों के ऐसे जहां में जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहां खो जाए, लॉस्ट इन लव, खो जाओ उस दुनिया में, खो जाओ उस दुनिया का चिंतन करो, उस दुनिया का मनन करो, उस दुनिया के संस्कार यहां इमर्ज करो। कैसे इमर्ज करेंगे, लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठ जाओ और कहो चिमन भाई क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ओहो हम ऐसा बनने वाले हैं, ऐसी निर्विकारिता, ऐसी पवित्रता हमारे अंदर होगी, इतनी प्यूरिटी हमारे अंदर होगी। वहां की दिनचर्या कैसी होगी, सुबह जागेंगे, कौन जगाएगा तुमको, पंछी प्रकृति जगाएगी, यहां प्रकृति पति जगाता है, वहां प्रकृति जगाएगी, चलो यहां का मतलब पहले हम आज वहां का चिंतन कर रहे हैं, नहीं तो वो कम हो जाएगा, क्योंकि 7 तारीख की मुरली में उसको कम दिखाया, इसको ज्यादा बताया है उसका, आज उसका इंपॉर्टेंस, तो वहां प्रकृति जगाएगी। उसके बाद में जगेंगे अमृत वेला ही, क्यों जगेंगे अमृत वेला, क्योंकि तुम्हारे भक्तों को भी तो जगना है, क्योंकि तुम उनके इष्ट देव हो, और वहां थकान कभी नहीं फील होगी, किसी भी प्रकार की कोई भी थकान नहीं होगी, वहां कोई हार्डवर्क नहीं होगा, कोई मेहनत का काम नहीं होगा, वहां तुम्हारे पीछे साधन घूमेंगे, वहां वैभव कहेंगे कि मालिक मेरा प्रयोग करो, वहां पर तुमको प्राप्तियां कहेंगे मेरा उपयोग करो, मुझे कार्य में लगाओ, वहां कारोबार होगा, मधुबन में जैसा कारोबार है, मधुबन में जैसे लेन देन करते हैं, वहां पर मालिकपन का भाव, ग्राहक का भाव नहीं होगा, मधुबन में जैसे लेन देन होती है वैसे वहां बार्टर सिस्टम होगी, वहां करेंसी भी होगी, परंतु उस माफिक नहीं जैसे इस संसार में है, वहां पर अशर्फिया होगी, वहां पर मोल भाव नहीं होगा, वहां पर तुम्हारे ताज तख्त तिलक होंगे, परंतु ये जो है बहुत हल्के होंगे, वहां पर लाइट होंगी पर सोने की, हीरे की लाइट्स होगी, अलग 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 अलग, एक हीरे में 7-7 रंग दिखाई देंगे, तो ही महल ऐसे होंगे, और वायरलेस होगा, यहां के माफिक तारे वहां नहीं होगी, यहां की तारे वहां नहीं होगी, वहां पर क्या होगा, वातायन नहीं होंगे, झरोके उस तरह के नहीं होंगे जैसे यहां है, और ना एक ही फ्लोर का घर होगा, और मखमल के गद्दे होंगे, और ड्रेस कैसे होंगे, बहुत हल्के लाइट होंगे, जेवर भी लाइट होंगे, और रियल गोल्ड होगा, और हर कार्य, और भाषा एकदम शुद्ध हिंदी होगी, वहां पर एक ही शब्द का एक ही अर्थ होगा, यहां तो डबल मीनिंग है, एक एक शब्द के कई सारे अर्थ है, कंफ्यूज कर देते हैं यहां पर। वहां पर अतिशय शुद्ध हिंदी भाषा होगी और भाषा हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, एक छत्र साम्राज्य होगा लक्ष्मी नारायण का, अद्वैत राज्य होगा लक्ष्मी नारायण का, और वहां की लंबी आयु होगी और मन में भी रोएंगे नहीं। सपनों के ऐसे जहां में जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहां खो जाए, शिकवा ना कोई गिला हो, वहीं कहीं बैर ना हो, कोई गैर ना हो, सब मिलके यूं चलते चले, सब मिलके चलेंगे, किसी भी प्रकार का बैर नहीं होगा। वहां हर दिन उत्सव होगा, वहां का ट्रांसपोर्ट पुष्पक विमान होगा। सोसाइटी कैसी होगी? एक नदिया कैसी होगी? नदियां भी होगी, हाँ, नदियों में जो पानी आएगा वो जड़ी बूटियों से भरा, जैसे यहां पर जड़ी बूटियों का पानी आता है गंगा नदी का, तो वहां उसमें सुगंध होगी, दूध की नदियां, दूध की नदियां कहावत भी है वैसे तो। वहां पर संबंध कैसे होंगे? एक रस, लून पानी नहीं होंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। वहां पर स्वयंवर होगा, क्या होगा? स्वयंवर होगा, दासिया मिलेगी। उसके बाद में वहां की जनसंख्या कितनी होगी? बहुत कम होगी पॉपुलेशन। वहां की प्रकृति कैसी होगी? सत्व प्रधान होगी। वहां के महल हो गया, वहां की पोस्ट पोजीशन, वहां पिकनिक के लिए कहां जाएंगे? वहां पर एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई क्रैश लैंडिंग नहीं होगी कभी भी। वहां पर संकल्प से ही कितनी तेज जाएंगे? बाबा ने कहा है संकल्प से भी तेज विमान पहुंचेगा, संकल्प से भी तेज विमान की स्पीड होगी। ऐसे वहां के नाम कैसे होंगे? हर वस्तु को नाम क्या होगा? दंत किलकारी, दंत किलकारी, और उसको क्या कहते हैं? दंत केश चिलकारी, दंत और केश चिलकारी, और ऐसे एक दो तो नाम बताए संदेशों में। फिर जीवन शैली और इनकम, हिस्ट्री, हेल्थ तो बोल दिया, गवर्नमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गई, गेम्स बता दिए, गीत, फैमिली, अच्छा खेत, फार्मिंग, खेत बहुत होगी, जमीन बहुत है ना आबू, जितना एक जगह बाथरूम बोला था। बाथरूम ज्ञान सरोवर ने आबू जितना घर, ज्ञान सरोवर जितना बाथरूम, ये ठीक है। एजुकेशन सिस्टम होगी, इलेक्ट्रिसिटी तो लाइट, इकोनॉमी हो गया, डांस हो गया, डेकोरेशन नेल हीरो से डेकोरेशन होगा, फिर ड्रेस हो गया, कुकिंग तो होगा ही नहीं, क्लाइमेट मौसम सदा बाहरी मौसम, कम्युनिकेशन भाषा हिंदी, कल्चर देव संस्कृति होगी, सुंदर होंगे देवी देवता है, दिखने में कैसे होंगे? बहुत सुंदर, अट्रैक्टिव होंगे, वहां पर सुंदर होंगे इसलिए उन्हें किसी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ श्रृंगार वो करते हैं जो सुंदर नहीं है, समझ में आ गया ना? अभी श्रृंगार कौन करते हैं? दोज़ हू आर अगली। हाँ, ये थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना इसको, जो सुंदर है उन्हें श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है। पाउडर सेंट कौन लगाते हैं? जो सुंदर नहीं है वो लगाते हैं ये सारी चीजें, बालों को काला करना, ये लगाना, सेंट लगाना, ये लगाना, डिओड्रेंट, क्या क्या लगाते रहते हैं, बहुत सारी लगाते हैं। सेंट ऐसा लगाते, ऐसा लगाते, सुबह 3 बजे कुटिया में बैठो, कोई ऐसा आ जाता है महान योगी, सेंट लगाकर कि धड़ाधड़ सारे नीचे गिरते हैं परमधाम से और सूक्ष्म वतन से। सुबह 3 बजे सेंट लगा के आ जाते हैं कुटिया में, क्या करें। और एकदम भयंकर फ्लेवर, रोज नासा पुटों में घुस जाता है बेचारा, बाबा के साथ एक मैं बीज रूप अवस्था में हूं कंबाइंड। बाबा को दूर छोड़ के धड़ाम से नीचे गिरता होगा। वहां का आर्किटेक्चर, नक्काशिया सुंदर होगी, एरिया बहुत बड़ी होगी, उम्र बहुत बड़ी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन बोल दिया, जन्म और मृत्यु, पक्षी हो गए, पशु हो गए, कोर्ट, वहां का राजप्रसाद, वहां का राजपाट, राजपथ, सब कुछ दिव्य होगा, भव्य होगा, और क्या रह गया? सब हो गया, हाँ हिंसक जानवर, हिंसा तो बाद में द्वापर से जब आखेड़ चालू किया राजा महाराजाओं ने, तब जानवर तो है परंतु हिंसक नहीं है, हिंसक मर्यादा में रहेंगे, गंद नहीं करेंगे, तुम्हारे इर्द गिर्द आगे पीछे घूमेंगे, साकार मुरली बोला है ना साकार मुरली में, और महलों के ऊपर कबूतर नहीं बैठेंगे, और साइंस, साइंस होगा साइंस बहुत रिफाइंड होगा, पर होगा जरूर। तो इस मुरली में टोटल 10 से 14 बातें हैं। पहली पॉइंट है उस मुरली में सर्व संपत्ति से संपन्न, वस्तुओं से मालामाल, ये फिर प्राप्तियां आगे पीछे चक्कर लगाएंगी, तीसरा वैभव तुम्हारे लिए एवर रेडी रहेंगे, फिर शहनाइयां ऑटोमेटिक बजती रहेगी, फिर वनस्पतियां को वो सब बोल दिया, फिर फल फूल के बारे में बोला, फिर सातवां अमृत वेला टेप नहीं उठाएगी। हाँ अमृत वेला अलार्म से जगना, क्या ये नेचुरल है? डाउट है, वो सब ठीक है, परंतु अगर हम योगी है और हमारी नेचुरल जीवन शैली है तो हम अलार्म से आवाज से उठते हैं धड़ाम से, तो क्या ये उठने का तरीका योगी जीवन का तरीका है? सबसे पहला प्रश्न अलार्म से उठना, दूसरा उठते ही टाइम देखना, क्या ये योगी जीवन का लक्षण है? दूसरा, तीसरा उठते ही जल्दी पहुंचना है, अर्थात हम योगी बने ही नहीं है। योगी अर्थात सहज उठ जाए, सहज सो जाए और सहज उठ जाए बिना किसी सहारे के, वही उठते ही फर्स्ट रिएक्शन है शॉक की, इतना बज गया, वो मेरे से पहले उठा, वो बाथरूम में घुसा हुआ, मैं कब जाऊंगा? सोए ही नहीं, करेंसी हो गया, ये हो गया मालिकपन का भाव, हो गया भाषा, हो गई पिकनिक, हो गया विमान, हो गया रत्न जड़ित साज, हो गया ड्रेस, हो गया हाँ हर कार्य के लिए और हर समय के लिए अलग अलग ड्रेस, और हर स्थान के लिए अलग अलग ड्रेस, ऐसा नहीं लक्ष्मी नारायण के कितने ड्रेस होंगे, एक भाई ने निकाले थे एक साल में कितने ड्रेस पहनेंगे, टोटल ड्रेस एक दिन में कितने प्रोग्राम होंगे उस पर डिपेंड करता है, एक दिन में अगर 10 प्रोग्राम, क्योंकि एज अ चीफ गेस्ट तो जाएंगे ना एक दिन में, और उनके जो पहने हुए ड्रेस फिर दस दस ही पहने, वो एक ड्रेस एक ही बार पहनेंगे, नखरे तो बहुत है लक्ष्मी नारायण के नहीं पर भरमार इतनी है तो करे क्या, वो भी एक प्रश्न है, बहुत है, साल भर चलेंगे इतने हैं और वो खराब नहीं होंगे ना, डस्ट प्रूफ, वहां पे खिलौने भी होंगे, तो आचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार चले, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर गंगोर अंधेरा भागे, कभी धूप खिले कभी छाव मिले, लंबी सी डगर ना खिले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, जहां दूर नजर दौड़ाओ आजाद गगन लहराए, जहां रंग बिरंगी पंछे आशा का सवेरा लाए, सपनों में पले हस्ती हो गली, जहां शाम सुहानी ढले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, सपनों के ऐसे जहां में जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहां खो जाए, शिकवा ना कोई गिला हो, कहीं बैर ना हो कहीं गैर ना हो, सब अपने हो, सार्वभौम यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कोई भी पराया नहीं है, विश्व एक ग्राम होगा विश्व ग्राम, कहीं बैर ना हो कोई गैर ना हो, सब मिलके यूं चलते चले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस ऐसी गगन ऐसी जगह हमें चलना है। ओम शांति।
चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे कभी धूप खिले कभी छांव मिले लंबी सी डगर न खले जहां हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार फले एक ऐसे गगन के तले। जहां दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए लहराए जहां दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए सपनों में पली हंसती हो कली जहां शाम सुहानी ढले जहां गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले। सपनों के ऐसे जहां में जहां प्यार ही प्यार खिला हो हम जाके वहां खो जाएं शिकवा न कोई गिला हो कहीं बैर न हो कोई गैर न हो सब मिल के यूं चलते चले जहां गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले आ चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले।